ओम शांति। आज का वरदान याद है किसी को? अंतर्मुखता, एकाग्रता और उससे क्या देखेंगे? अनुभव, सूक्ष्म शक्तियों की लीलाएं। स्लोगन भी याद है किसी को? प्रत्यक्ष, स्लोगन था आज या कल, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे अच्छा प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण। बाबा का ज्ञान हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हो, वही उसकी सत्यता का प्रमाण है। ज्ञान सत्य है। हम पढ़ते आए, आप सब भी पढ़ते आए, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य वही है जो शिवम करे, कल्याण करे, और जो कल्याण कर दे वही सुंदर है। तो सत्य की यही पहचान है। किसी ज्ञान से अगर कल्याण नहीं होता, जीवन का श्रृंगार नहीं होता, तो वो ज्ञान सत्य नहीं है। तो हमारा सारा ज्ञान हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में आता रहे, ये ईश्वरीय ज्ञान का सबसे प्रैक्टिकल प्रूफ होगा। सभी इस पे ध्यान दें। ज्ञान सत्य है, ये हमें अपने जीवन से दिखाना है। एकाग्रता बहुत ही बड़ी चीज है मनुष्य के लिए। आप सबके घरों में जो स्टूडेंट हैं, आपके बच्चे, आप जानते हैं जिसकी एकाग्रता बहुत अच्छी है वो पढ़ाई का आनंद लेते हैं। जिनकी एकाग्रता अच्छी नहीं, वो रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी शिकायत होती है, बहुत मेहनत की, हमारे बच्चे ने नंबर कम आए। एकाग्रता जिससे हमारी ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। नहीं तो क्या होता है, बच्चों को पढ़ रहे हैं किताब, मन कहीं और। तो मन जब कहीं और होता है, बुद्धि ग्रहण नहीं करती। पढ़ते भी रहेंगे, ठीक लगता रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी होती रहेगी, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। तो हम सभी को राजयोग में बहुत अच्छी एकाग्रता होनी चाहिए। तो सूक्ष्म शक्तियों की लीलाएं, कमाल देखेंगे। कौन सी हैं सूक्ष्म शक्तियां? मन, बुद्धि, मुख्य रूप से सूक्ष्म शक्तियां ये हैं हमारी। आठ शक्तियां भी हैं मन में, मन से जुड़ी हुई आठ शक्तियां। एकाग्रता के द्वारा इनके चमत्कारिक कार्य हम अनुभव कर सकते हैं। बिना एकाग्रता के वो चीज समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए अगर हम उस पर डिटेल क्लास करें तो बहुतों को समझ में नहीं आएगा। वो एकाग्रता बढ़े, हम अपनी शक्तियों को, सामना करने की शक्ति, जो हमारी शक्ति है, उसे ऑर्डर दे सकते हैं। इस व्यक्ति के पास जाओ, इसके शरीर में बहुत बीमारियां हैं, इससे सहन नहीं हो रहा है, इसके जीवन में समस्याएं हैं, ये सामना नहीं कर पा रहे हैं, तुम जाओ उनको मदद करो, तो हमारा आदेश मानेंगी शक्तियां। और उनमें सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति दिखाई देने लगेगी। मन, बुद्धि, मन संकल्प, संकल्प को हम प्रैक्टिकल घटता हुआ देखेंगे। जो संकल्प करेंगे वही घटित होने लगेगा। विनाश काल में कुछ ऐसी पावरफुल आत्माएं विनाश को भी डायरेक्ट करेंगी। समझ गए ये भाषा? जो इस तरह की भाषा नहीं जानते, विनाश में जो घटनाएं होंगी उनको नया रूप दे सकेंगे ऐसे महान योगी आत्माएं। संकल्प करेंगे, मान लो एक देश सोच रहा है दूसरे देश पे एटम बम डाल देता हूं, नष्ट कर देता हूं, वो संकल्प करेंगे डाले ही नहीं, उसका मन शांत हो जाए, निर्णय बदल जाएगा। तूफान आ रहा है, विनाश करता हुआ आ रहा है, संकल्प करेंगे शांत हो जाओ, तूफान शांत हो जाएगा। ये चमत्कारिक लीलाएं दिखाई देंगी विनाश काल में। बहुत सारे लोग हिंसक भावना से आएंगे, दृष्टि देंगे, संकल्प करेंगे, इनका चित्त शांत हो जाए, और वो शांत हो जाएंगे। इसके लिए बहुत अच्छी एकाग्रता की शक्ति चाहिए। यहीं साइलेंस पावर के समक्ष साइलेंस पावर झुक जाए, साइंस पावर झुक जाएगी। योग की शक्ति को साइंस की शक्ति स्वीकार करेगी कि हमारे पास केवल विनाश की शक्ति है, लेकिन साइलेंस पावर में स्थापना की शक्ति है, शांति स्थापना की शक्ति है। तो एकाग्रता को बहुत बढ़ाएंगे। कैसे? एक पांच सूत्री कार्यक्रम बना सकते हैं। किस किस को चाहिए एकाग्रता? ऐसे तो सबको चाहिए, लेकिन मैंने प्रश्न दूसरे लक्ष्य से पूछा है। सोच लो, एकाग्रता का अर्थ है मन बुद्धि को जहां चाहे, जिस स्वरूप पर चाहे, जब चाहे, जितना समय चाहे स्थिर कर सकें। देख लो, ये आप कर पाएंगे? कौन कर सकते हैं? सोच लो। नहीं, सोच लो बस। ये सबसे बड़ी शक्ति काम करेगी। थोड़ी देर भी हम किसी अपने स्वरूप पर, मान लो हमारा स्वरूप है देव स्वरूप, अपने देव स्वरूप पर एकाग्र होंगे, ये मैं हूं, उसके अलावा कोई अलग विचार नहीं पांच मिनट तक, तो हमारे अंदर समाया हुआ देवत्व बहुत जागृत होने लगेगा। अपने फरिश्ते स्वरूप पर एकाग्र हो जाएंगे तो हमारा फरिश्ता स्वरूप हमें प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। तो इसको बढ़ाने के लिए पहला चाहिए अंतर्मुखता, जिस पर हमें बहुत ध्यान देना है। अंतर्मुखता का मोटा अर्थ तो है ज्यादा न बोलना। मोटा अर्थ बहुत जरूरी है वो भी, क्योंकि जो बहुत बोलते हैं उनका मन भी बहुत चलता है। बहुत बोलने से ब्रेन की शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं और एकाग्रता नहीं होती। कई बच्चे आते हैं ना छोटे, माताएं शिकायत करती हैं, छोटी लड़की बहुत ही बोलती है, चुप ही नहीं होती, मेरा भी दिमाग खा जाती है, इसको चुप करने के लिए मेरी भी समझ में नहीं आता क्या करूं। ये संस्कार बचपन से ही अगर बच्चों में है तो आगे चल के उन्हें एकाग्रता में दिक्कत होगी। हम सभी अंतर्मुखी बने। दूसरा अंतर्मुखता का अर्थ है सीधा सा अर्थ आत्मा पर स्थित होना। अंतर जो आत्मा है, अंदर में जो आत्मा है, मुख के अंदर जो आत्मा है, फेस है ना मुख, इसके अंदर जो आत्मा है उस पे अधिक बार एकाग्र होना, ये अंतर्मुखता है। कर्मेंद्रियों के रसों से अपने को मुक्त करना, ये अंतर्मुखता है। हमारा चिंतन अंदर की ओर हो जाए, बाहर की ओर जो हमारा चिंतन है, आकर्षण है, वो समाप्त हो जाए, ये अंतर्मुखता है। तो इसलिए एकाग्रता बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। आप वैज्ञानिकों को देख सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में एक लेख छपा था, एक मैगजीन आती है विवेक ज्योति, उसमें वो लेख छपा, मैंने पढ़ा उसको ध्यान से, क्या लिखते हैं ये, उसकी कहानी लिखी थी जीवन की, कि वो बैठता था जब अपनी लेबोरेटरी में सब चले गए हैं, उसको पता ही नहीं सब भी चले गए, कभी उसको याद ही नहीं कि लंच भी खाया या नहीं खाया। लोग उससे पूछते थे, सर लंच तो कर लो, सोचने लगते थे किया या नहीं किया, कर तो लिया था। कहा मैं अपने कार्यों में इतना तल्लीन हो जाता हूं, ये अंतर्मुखता है। इसे एकाग्रता से ब्रेन की अनेक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। मनुष्य के ब्रेन में भी बहुत शक्तियां हैं। आप सबने सुना होगा, लोग कहते हैं, मनोवैज्ञानिक और मेडिकल साइंटिस्ट सीमाबेन, कि ब्रेन की बहुत कम शक्तियों को मनुष्य यूज करता है, कोई 10% कहते हैं, कोई आसपास। आइंस्टाइन के लिए कहते हैं उसने अपनी ब्रेन की शक्तियों को 30% यूज किया, अंदाज लगाते हैं लोग। हम 100% यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत अंतर्मुखता एकाग्रता के माध्यम से। अगर वेस्ट है, हम एक छोटा सा पैमाना अपने पास रख सकते हैं, जितना हमारे मन में व्यर्थ है उतनी ही परसेंटेज हम अपने ब्रेन को निगेटिवली यूज कर रहे हैं। जितना मन हमारे मन में पॉजिटिविटी है, अच्छे विचार हैं, योग है, अच्छे अच्छे अभ्यास है, उतनी परसेंटेज में हम अपने ब्रेन की शक्तियों को यूज कर रहे हैं। इसलिए जब हम संपूर्णता के समीप पहुंचेंगे, संपूर्णता की एक पहचान है व्यर्थ से पूरी तरह से मुक्त। जब हम इस स्थिति में पहुंचेंगे तब हम अपने ब्रेन की लगभग समस्त पावर को यूज करेंगे, हमारा लाइफ बहुत डिवाइन हो जाएगा, हमारी दृष्टि से बहुत दिव्यता लोगों को दिखाई देगी, हमारे बोल में वरदान अनुभव होंगे, हम सब कुछ देख सकेंगे। आपने सुना होगा बाबा की बात, सतयुग से लेकर और कलयुग तक के सभी जन्म फिल्म की तरह तुम्हारे सामने आने लगेंगे, लेकिन उनके सामने जिनकी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। अब से ये कार्य संभव है, हम अपनी एकाग्रता को बहुत अच्छा कर दें, अर्थात अपने ब्रेन की शक्तियों को हम संपूर्ण रूप से तब यूज करते हैं जब हम पूरी तरह एकाग्र होते हैं, तो हमें दूर दूर की चीजें दिखाई देने लगेंगी, सतयुग क्लियर दिखाई देगा, सूक्ष्म लोक में क्या हो रहा है क्लियर दिखाई देगा। बाबा जब अव्यक्त हुए तो ये प्रश्न बहुत पूछा करते थे, क्या तुम देख सकते हो वतन में क्या कारोबार चल रही है, स्थापना की काफी एक्टिविटी वहां पर चलती है, भिन्न भिन्न फरिश्तों के द्वारा बाबा भिन्न भिन्न कार्य कराते हैं, किसी को वैज्ञानिकों को प्रेरणा देने के लिए भेजते हैं, किसी को पॉलिटिशियंस को, किसी को और ऐसे अच्छे कार्य करने वालों को जो स्थापना के कार्य में मुख्य भूमिका अदा कर सकते हैं। तो हमारे पास ये शक्ति एकाग्रता से आएगी। तो बनाए 5 पॉइंट फॉर्मूला जिससे हमारी एकाग्रता बढ़े। हम ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। बोलो कौन बोलेंगे पहले? एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबको पता है आपको, है? प्योरिटी इज द की टू कंसंट्रेशन, ऐसा मान लें। पवित्रता एकाग्रता का बीज है, मूल में है, इसको हम बहुत बढ़ाएंगे। इसका मोटा रूप व्यर्थ से अपने को मुक्त करना, और व्यर्थ से मुक्त करने के लिए हमारे पास संपूर्ण ज्ञान के प्रयोग होने चाहिए। ज्ञान की एक एक पॉइंट हमें व्यर्थ से मुक्त कर देती है। जैसे मान लो किसी के मन में व्यर्थ चल रहा है पर चिंतन के कारण। मुझे एक भाई की कहानी कल बताई, वो सेवा में आया है कि वो बहुत दुखी रहता है दूसरों को देख देख के। एक मात आया है केवल, मैंने कहा भाई उसको मेरे से मिलाओ तो बेचारा सुख तो लेकर जाए, यहां यज्ञ में सेवा करने आया है। ज्ञान हमें सिखाता है ना, किसे देखो किसे न देखो, क्या देखो तुम क्या नहीं देखो, ये तो संसार में लोग नहीं जानते। तो ज्ञान का प्रयोग करके इस व्यर्थ को पर चिंतन को हटाएं। चिंताएं रहती हैं परिवार की, ज्ञान का प्रयोग करें। एक भाई मेरे पास आया आज ही, चेहरे पे उदासी थी उसकी साफ दिख रही थी, जाना तो मुझे बाहर था लेकिन मैंने सोचा इसको मिलके ही चलता हूं। पूछा मैंने क्या है चेहरे पे आपके, खुशी नहीं है कि मुझे कारोबार में कहीं भी सफलता नहीं मिलती, जीवन में लंबा समय हो गया संघर्ष करते हुए, पैसा जैसे मेरे भाग्य में ही नहीं है। चिंता होती है ना मनुष्य को, बड़ी नेचुरल बात है, परिवार के लिए पैसा चाहिए, वो मेहनत भी कर रहा है, ऐसे नहीं वो आलसी है कुछ करता नहीं है। चिंता होती है, किस तरह ऐसी चिंताओं को ज्ञान के बल से हटाएं। पास्ट की चिंतन व्यर्थ, बहुत व्यर्थ का कारण कईयों का पास्ट है, उससे कैसे मुक्त हों। फ्यूचर है, कई बच्चों के फ्यूचर को लेके चिंतित हैं, उसको ज्ञान के बल से कैसे अपने चित्त को शांत करें। तो ज्ञान का प्रयोग करके प्योरिटी और उसका साथी व्यर्थ संकल्प जो उसमें बाधक हैं, इम्प्योरिटी के साथी हैं व्यर्थ संकल्प, उससे मुक्त करें। दूसरी पॉइंट बोलो हरगोविंद। नहीं और बोलो, और बोलो स्वमान। ये पॉजिटिव अप्रोच, स्वमान पे हम आते हैं क्योंकि कल की मुरली में बाबा ने हमें बहुत ऊंचे महान स्वमान दिए हैं। तीसरी बात बोलो इधर के भाई, कुछ छोड़ने वाली कुछ करने वाली बोलो। ये छोटी बातें हैं निश्चय, बोलो। एकांत में स्वचिंतन मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिना एकांत स्वचिंतन एकाग्रता नहीं हो सकती। चौथी बात, अमृत वेले को बहुत आनंदकारी बनाना। पांचवी बात, मैं प्रैक्टिस की बात बताता हूं केवल, शरीरीपन और आत्मिक दृष्टि का बहुत अच्छा अभ्यास करना। ये पांच ले लें बस। छोड़ने की बातें तो व्यर्थ संकल्पों में सब आ गई, व्यर्थ में सब आ जाता है। एकाग्रता के लिए बाधक भी व्यर्थ ही है, इधर देखना उधर देखना, किस लिए आए हैं। एकांत में स्वचिंतन बहुत बड़ी चीज है, किस लिए आए हैं बाबा के पास, सब चिंतन करें। जो समर्पित हैं वो गहरा चिंतन करें, क्यों जीवन अर्पित किया है। जो घर छोड़कर बीके कॉलोनी में आ बसे हैं वो भी चिंतन करें, क्यों आए हैं। जो नहीं आए और घरों में हैं बाबा के बन गए, सोचो बाबा के बने हैं तो अब क्या क्या करना है क्या क्या नहीं, ये स्वचिंतन है। बाबा का बन गए और वही कर रहे हो जो नहीं करना है, वही सोच रहे हो जो नहीं सोचना है, तो बनने का ज्यादा लाभ नहीं होगा। तो अंतर्मुखी होकर एकांत में ऐसी स्वयं से बातें अवश्य करें। और जो लिख सकते हैं वो लिखेंगे, क्यों आए हैं बाबा के पास, क्या लेना चाहते हैं हम, जन्म जन्म हमने भगवान से क्या चाहा था, क्या मांगा था, अब वो लेने का समय है। उस सब को लेने के लिए मैं क्या अच्छे से अच्छा करूं। भगवान सब कुछ देने आया है, थोड़ी थोड़ी शांति मांगते थे, बच्चों को पास करा दो इतना ही मांगते थे, कर्ज बहुत हो गया इससे मुक्त करा दो ये मांगते थे, ये बीमारी हो गई हे प्रभु इससे इसे ठीक कर दो, उसे भी डॉक्टर समझते थे। अब वो क्या कहा, सब कुछ देने आ गया है और इतना दे देता है कि हम सबको ये मदद करने लगे। जो हम भगवान से मांगते थे वही हम दूसरों को देने लगे, संसार को, वो हमें इतना कुछ दे देता है। ये स्वचिंतन करें, वो सब कुछ देने आया है, क्या हमें भी सब कुछ लेने की दृढ़ इच्छा है, या देने वाला देना चाहता है और लेने वालों को ख्याल ही नहीं है कि ले लेना भी चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं ना दुनिया में, देखो कई लोग यहाँ काम करते ना मजदूरी, आज के लिए मिल गया ना खाने को, मस्त पूर्ण संतुष्ट हैं, आज मिल गया ना 150 रुपए मिल गए, आज अच्छी तरह खाएंगे आज रात को, कल क्या होगा कोई उन्हें चिंता नहीं। दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं इतना मिल गया खुश है, बिजनेस कर रहे हैं इतना मिल गया खुश है, सबकी लेने की इच्छा भी अलग अलग है ना। कोई सोच रहा मास में 1 लाख कमा लूं, कोई सोच रहा 1 करोड़ कमा लूं, कोई ये भी सोच रहा 50 करोड़ कमा लूं 1 साल में, हर एक की दृढ़ इच्छा अलग है। हमारी क्या है, बाबा से क्या क्या ले लें, अनंत शक्तियां, अथाह ज्ञान, सर्व खजाने, दुआएं, बहुत बड़ी चीज है ये। कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल अब मिलती हैं चारों युगों में, परमात्मा दुआएं, उसका श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ वरदान, उससे शक्तियां, खुशी तो जन्म जन्म भी मिलती रहेगी, लेकिन ये चीजें केवल अब मिलती हैं, हम अधिकतम प्राप्त करें। तो एकाग्रता के लिए हमें बहुत अच्छे स्वमान की जरूरत है। कल कौन सा बड़े से बड़ा स्वमान कहा बाबा ने, बाप समान संपन्न। सोचो अगर कोई ये सोचे मुझे बाप समान बनना है तो शायद सोचना ही छोड़ दे, कि तो सोचना भी ज्यादा सोचना है कुछ। लेकिन अगर हम ये मान लें मैं बाप बोलो समान हूं, अंतर देखो, तो एक दूसरी फीलिंग होगी जीवन में। मैंने ये बात 82 से सीखी, बाबा की मुरलियां चली थी, खुदा दोस्त पर दो मुरलियां 82 की है। एक मुरली में बहुत अच्छी बात आई, तुम सोचते हो मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, परंतु नहीं, तुम ये सोचो मैं परम पवित्र आत्मा हूं। वहीं से सीखा मैंने ये, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। तो जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं ना गहराई से, बिल्कुल सोचें आप अंतर मन में उसको उतार दें मैं ये हूं, उसका हम स्वरूप बन जाते हैं। किसी ने अंतर मन में उतार दिया हो मैं इस बुराई को नहीं छोड़ पाऊंगा नहीं छोड़ पाऊंगी, तो क्या होगा, असंभव। और किसी ने उतार लिया हो नहीं भगवान मेरे साथ है मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, उसका स्वरूप कुछ और होगा। किस चीज को हम गहराई से स्वीकार कर रहे हैं, ध्यान दे सभी, बहुत बातें हर एक के जीवन में गहराई से स्वीकार कर लें। सभी सोचे, कन्याएं बैठी हैं छोटी, सब विचार करें किस चीज को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, किस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। देखो रिजेक्ट करते हैं ब्राह्मण बहुत चीजों को। बुल्ली में आता है, बच्चे कम से कम मुझे 8 घंटा याद करो रोज। ये हम सब, ये सभी जब सुनते हैं तो सब आज अपने से पूछो क्या होता है हमारे अंदर। कुछ ऐसा होता है जिसका हमें पता नहीं होता। अनेक सोचते हैं ये अपना काम नहीं है, ये जो सेंटरों में रहते हैं ना, मधुवन में समर्पित हैं, उनका काम है। हम तो गृहस्थ में रहने वाले थोड़ा बहुत बैठ के कर लेंगे, वो ही बहुत है। मधुवन वाले जब सुनते हैं वो क्या सोचते हैं, बहुत सेवाएं हैं, बहुत बिजी हैं, अपने से होगा नहीं। कुछ लोग जो फ्री है ना वो कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति कुछ कर रहा है। हाँ नहीं, हर एक नहीं, आप क्या सोचते हैं वो आप बता दो। हाँ तो कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो ये सोचते हैं हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भगवान हमारे लिए ही तो कह रहा है, कोई न करता हो तो बाबा क्यों कहेगा। जो ये सोचते हैं उनके कदम उस ओर चलने लगते हैं ना। देखिए माँ बाप बहुत बैठे हैं आप लौकिक, आप अपने बच्चों को वो काम कभी नहीं देंगे जो वो कर ही ना सकते हो। 5 साल का बच्चा आपके घर में, आप उसे 1000 रुपए दे के तो नहीं कहेंगे बाजार जाओ और ये कपड़े खरीद लाओ, क्योंकि वो नहीं कर सकता। बाबा ने भी जो हमें काम दिया है ये जानकर दिया है कि ये कर सकते हैं। जीवन के हर फील्ड में आप देखो, मुरली सुनते हैं तो चेक करना कौन सी बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, कौन सी बात को रिजेक्ट कर रहे हैं। प्योरिटी की बात को भी बहुत लोग रिजेक्ट कर देते हैं। बाबा ने कहा ये नहीं हो ये हो, कई सोचते हैं ये तो अंत में होगा ना, अब तो चलेगा, वीक कर दिया अपने को। लेकिन भगवान ने जो आज कहा है उसे स्वीकार कर ले हम, तो ईश्वरीय शक्तियां भी हमें मिलेंगी और हमारी दृढ़ता भी, दृढ़ता की शक्ति भी उस चीज को धारण करने में बहुत मदद मिलेगी करेगी। तो स्वमान बाप समान, मैं एक विजन देता हूं आपको, चाहेंगे आप बाप समान बनना। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि शिव बाबा हमें परम धाम में बुलाकर कह दे कि जरा मेरी सीट पर बैठ जाओ, भगवान बना देता हूं तुम्हें आज के दिन के लिए, बन के देखो जरा क्या करेंगे हम तब, क्या हमारी फीलिंग होगी तब, कैसे हमारे वाइब्रेशंस होंगे तब, कैसा दृष्टिकोण होगा सबके लिए, क्या हमें लगेगा ये तो बड़ा खराब आदमी है, ये मेरा दुश्मन है, इससे बदला ले लेता हूं, भगवान बन गए अब ठीक कर देता हूं इसे, होगा नहीं होगा। बैठना जरा, कल सवेरे और आज रात को बाबा की सीट पे बैठ के नीचे को देखना, सुख संवतन में बैठ सकते हैं। देखो एक चित्र बनाए सभी के, परम धाम में शिव बाबा है, उसका मन सभी के लिए प्रेम, सुभावना, अपनापन, देना, इस सब से भरा हुआ है ना, दाता है वो, उसके वाइब्रेशंस फैल रहे हैं संसार में इन्हीं चीजों के, उनके वाइब्रेशन से कोई सुख पा रहा है, किसी के दुख नष्ट हो रहे हैं, कोई उसके प्रेम का अनुभव कर रहा है, किसी को शक्तियां मिल रही हैं, किसी को शांति अनुभव हो रही है। हम भी वहां बैठकर संसार को ये सब चीजें देंगे, तो जिस चीज को हम स्वीकार कर लेंगे ना, स्वरूप बनेगा। 5-7 स्वमान निकाल लें हम, और बाबा के आने तक बहुत डीपली अपने अंतर मन में इनको भर दें, कौन हूं मैं, बड़े स्वमान निकालेंगे, विश्व कल्याणकारी। बहुत लोगों को इस पे चिंतन नहीं होता है, स्वीकार करें मैं विश्व कल्याणकारी हूं, कल की जो मुरली थी, देने वाले मेरा हर संकल्प विश्व का कल्याण करे, ऐसा संकल्प हो। मेरा हर बोल दूसरों का कल्याण करे, उन्हें खुशी दे, उन्हें उमंग दिलाए, उन्हें आगे बढ़ाए, उनके लिए वरदान हो जाए। मेरा हर कर्म, बोलो कन्याएं बोलेंगी, मेरा हर कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा हो। कन्याएं जिस मार्ग पर जा रही हैं संसार में, हमें देखकर वो अपनी राह बदल दें, श्रेष्ठ राह पर आ जाएं, उनके मन में जो विकृतियां आ गई हैं उसको रियलाइज करके पवित्रता का पथ अपना लें, ऐसा कर्म हो हमारा। है बहुत कन्याओं का बाबा के पास, मैं देखता हूं बहुत ऐसी कन्याएं हैं जिनके चेहरों से ही लगता है इन पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है, मुक्त हैं ये, देवकुल की आत्माएं हैं तो देवकुल के संस्कारों से भरपूर हैं। बिल्कुल ये मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे साफ साफ दिखता है, हमारे यहाँ किचन में भी आती रहती हैं, क्लासेज में भी, कि ये अलग हैं संसार से, तो वो संसार की शोभा है ना। यहां भी बैठे हैं कई, विश्व कल्याणकारी हूं। तीसरा स्वमान मास्टर भगवान हूं, कहा है बाबा ने, मैं मास्टर भगवान हूं, नेक्स्ट टू गॉड हूं, पूर्वज हूं। पूर्वज का काम है, सब जानते हैं, सबकी पालना करना, सबको देना, बड़े जैसे घर में बड़े हैं, माताएं बैठी है ना बुजुर्ग, अब क्या चाहेंगे, छोटे बच्चों को प्यार दें या उनसे प्यार लें, बोलो बुजुर्ग माताएं, दें, देने वाली, ये दाता के स्वरूप हैं हमारे पूर्वज, देने वाले हम वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ये बहुत सुंदर स्वमान है, हमें ऊंचाई तक ले जाने वाला स्वमान है। कलयुग के अंत तक भी देखो, इस देव देवियों को लोग कितने सम्मान से निहारते हैं, उनके दर्शन करने के लिए कितना इंतजार करते हैं, स्वच्छता बरतते हैं, फल फूल लेकर जाते हैं, भावनाओं से जाते हैं। हम वही हैं, क्या हो जाएगा इससे, क्या फायदा होगा, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं उनकी मनोकामनाएं यहां पूर्ण हो गई होंगी ना। क्या बाबा कहते हैं याद करो, बहुत ये बाबा की इम्पोर्टेंट धारणा है जो साकार मूल्यों में भी आती रही, इच्छा मात्रम अविद्या। ये इष्ट देव देवियों की स्थिति है जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए वो सबको देते हैं, जिन्हें अपने लिए ही चाहिए वो दे नहीं सकते। तो हम अपने स्वमान को ऊंचा उठाते चलें। मैं गृहस्थी माता नहीं, चार बच्चों की पालना करने वाली नहीं, माताएं बोले क्या हूं, सोच के बताओ, जगत की पालना करनी पड़ेगी, है घर में इतना अनाज, खिलाएंगे सबको, क्या हूं मैं, बोलो, ठीक बोला आपने, जगत माता हूं। इससे क्या होगा, छोटापन, मैंपन, मेरा, मोहममता समाप्त होती जाएगी और हम दूसरों को सुख शांति देने में लग जाएंगे। सारा ही हमारा परिवार है, जो माता अपने को जगत माता समझेगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे के थोड़े भी दुख को देखकर क्या क्या करती है, वैसे ही संसार में दुख बढ़ रहे हैं वे भी करने लगेंगी। तो ये हमारा स्वमान, हमारी विचारों को, संस्कारों को, भावनाओं को महान बनाएगा। तो कल बाबा ने हमें दातापन की विशेष बात कही, देते चलें। और अब संसार को जरूरत है, देखो धन बढ़ गया दुनिया में, काम धंधे भी बहुत बढ़ गए, लेकिन और क्या क्या बढ़ गए, डॉक्टर बहुत बढ़ गए, बीमारियां बढ़ गई। दो तो अभी अभी मेरे पास आए, यहां आने से थोड़ा ही पहले ये बीमारी है, सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, कुछ नहीं होता। एक अपने लड़के को लेकर आए, बड़ा लंबा चौड़ा, देख लिया मैंने उसको, ब्रेन जैसे उसको है ही नहीं ऐसा समझ लें। कहा सारी दुनिया के डॉक्टर दिखा लिए, इसके ब्रेन का सब कुछ करा लिया, किसी को पता ही नहीं चलता, कहते सब ठीक है। नहीं, सब ठीक होता तो ब्रेन ठीक ना होता। तो बीमारियां बढ़ रही हैं, अशांति बढ़ रही है, घर घर में क्या बढ़ रहा है, टकराव बढ़ रहा है, प्रेम समाप्त होके स्वार्थ बढ़ रहा है, धन के प्रति लोभ बढ़ रहा है, धन ही सब कुछ है, बाकी मार दो अपने भाई को भी चिंता ही नहीं करते लोग, भाइयों को मार देते हैं, सारी संपत्ति मुझे मिल जाए। हमें देना है, सद्विवेक देना है, ऐसा प्रेम देना है लोग प्रेम, सच्चा प्रेम करना सीख जाएं। अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि घरों में लोगों के संघर्ष समाप्त हो जाएं। कल बाबा ने कहा ना, देना है वाचा के द्वारा ज्ञान, मनसा के द्वारा वाइब्रेशंस, कर्म के द्वारा गुणदान, मूल्यां हैं इसकी। हम ऐसा जीवन बनाएं, कर्म क्षेत्र पर ऐसे बनकर रहें कि टकराव का नाम निशान ना हो, लोग सीखेंगे। हर गृहस्थी से 10-20 गृहस्थी जुड़े रहते हैं ना, वो सब सीखेंगे प्रेम से रहना, निर्लोभ स्थिति में रहना, सुख देते हुए रहना, अहम को समाप्त करते हुए चलना, एक दूसरे को सहयोग देते हुए, सम्मान देते हुए गृहस्थ में आगे बढ़ना, ये हमें अपने कर्मों से सिखाना है। तो सभी देंगे। अब बाबा के मिलन के दिन पुनः आ गए हैं, मैं आप सभी को फिर से याद दिला दूं, सभी को 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम संसार को वाइब्रेशंस देने हैं। और एक और बात, जिन लोगों के जीवन में विघ्न ज्यादा हैं, घरों में जिनको समस्याएं घेरे हुए हैं, जिनको जीवन का सुख नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास विघ्न और समस्याएं तो नहीं है, लेकिन मन परेशान रहता है, जानते हैं ना क्यों, जन्म जन्म के कर्मों के बुरे खाते के कारण खुश नहीं रहते, दबे दबे रहते हैं, जैसे बहुत बड़ी गलतियां करके आए हैं, उनका प्रेशर दिमाग पर पड़ा हुआ है, वो सब क्या करें। जिनका चित चैन नहीं पा रहा है, सब सुन लें, जिनको धन का अभाव हो रहा है, जिनको कार्यों में धंधों में सफलता नहीं मिल रही है, या ग्रस्त में ये सब है, 10-10-10 मिनट 3 बार संसार को गुड वाइब्रेशंस दिया करें, रोज टाइम फिक्स कर लें, इससे ये सब कुछ बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशंस देने से अनेक आत्माओं को जो लाभ होगा उसका पुण्य यहाँ के छोटे मोटे पुण्य से करोड़ों गुना बड़ा है। एक साथ करोड़ों आत्माओं को मदद मिलती है वाइब्रेशंस देने से। मान लो कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में बीमार है, ऑपरेशन हो गया है, लेकिन बहुत पीड़ा है, अब डॉक्टर क्या करे, पेन किलर खिला रहे हैं, एंटीबायोटिक खिला रहे हैं, लेकिन पीड़ा जा नहीं रही है। हमारे वाइब्रेशन से उनकी पीड़ा चली जाएगी। कोई मृत्यु सैया पर है लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं। योग के वाइब्रेशन से वो देह से मुक्त हो सकेंगे। तो इससे हमारा पुण्यों का खाता बहुत बढ़ेगा, इसलिए ये निगेटिव चीजें समाप्त हो जाएंगी। समझ गए ना? विघन, मन की परेशानियां, काम धंधों में दिक्कतें, बच्चों की कुछ बातें, सब ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये आधा घंटा, एक साथ नहीं, दस दस मिनट सबको देना चाहिए। देंगे, इसे बहुत अच्छा होगा। तो बाबा आ रहे हैं, जिन स्वमानों की हमने चर्चा की, इनके बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे अगले तीन दिन, और विशेष रूप से बाबा के दिन, जो भी बाबा से मिलने आए हैं और यहां बैठे हैं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। आंख खुलते ही ये दशा हो जाए, और सवेरे से ही देखना बाबा की किरणें सारे संसार पे पड़ रही हैं। ज्ञान सूर्य अपनी किरणें सारे संसार पर डाल रहे हैं। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर ऊपर को देखेंगे, शिव बाबा आ रहे हैं। आते हुए देखो जरा, महाज्योति, ग्रेट लाइट, जिसकी अनंत शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं, वो नीचे उतर रहे हैं, आ गए हमारी आंखों के सामने। किरणें पड़ने लगी सामने से। दूसरी बार विजन देखेंगे, बाबा ऊपर से आए, सूक्ष्म लोक में, ब्रह्मातन में प्रवेश किया, फिर दोनों आ गए हमारे सामने हैं। चलें अब इसी का अभ्यास करते हैं, रेड लाइट। सभी संकल्प करें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। क्योंकि स्वयं भगवान अपना धाम छोड़कर मुझसे मिलने आ रहे हैं। अब देखें परम धाम से महाज्योति अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए नीचे उतरने लगे। आ गए हमारी आंखों के सामने। जितने सुंदर रूप से आप देख सकें देखें, ज्ञान सूर्य चारों ओर गोल्डन किरणें फैल रही हैं, सर्वशक्तिवान। ये किरणें सारे संसार में भी फैल रही हैं, मुझ पर भी पड़ रही हैं।